بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، دیکھو خاوین کی 10 غلطیاں شوہر کی، اس پر بات چل رہی تھی. پہلی غلطی ہے، سب سے پہلے بیوی کو تین بنیادی ضرورت ہے. کیا تھی؟ ایک تو حفاظت، دوسرا اٹینشن، ٹائم دینا، اور تیسرا اطمینان، حوصلہ افزائی، اپریسیشن. یہ تین چیزیں اس کو ضرورت ہے. اب شوہر جو ہے، ان کی خاوند کی 10 بڑی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ان کو وہ تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ملتی نہیں. اس میں سے پہلی غلطی تو یہ ہے، کیا بتایا تھا پہلی غلطی؟ اگنور کرنا. ہاں، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. دوسری غلطی، طلاق کی دھمکی دینا. تیسری غلطی، دوسری شادی کی دھمکی دینا. اور چوتھی غلطی، بے عزتی کرنا ان کے رشتہ داروں کے سامنے، بچوں کے سامنے. اور پانچویں غلطی تھی، وقت نہ دینا. ہاں، سب کو وقت دے رہے، دوستوں کو، دکان کو، بیوی کو وقت نہیں دے. وہ پر بات چل رہی تھی. بعض مرتبہ نیکوکار مردوں کی بھی غلطی ہوتی ہے. کئی مرتبہ نیکوکاری کی وجہ سے لوگ اپنی بیوی کو وقت نہیں دے سکتے. کہتے ہیں ابھی میرا مراقبہ کا وقت ہے، ابھی میرا ذکر کا وقت ہے، ابھی میں پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں، ابھی میں اپنے استاد سے پڑھنے جا رہا ہوں، مدرسے جا رہا ہوں، گشت میں جا رہا ہوں، ایسا بہانہ بناتے اور وقت نہیں دے. اور کچھ لوگ ہیں جو اپنی روزی کی تلاش کے لیے لمبے عرصے کے لیے چلے جاتے ہیں، کسی دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، لہذا بیوی کو وقت نہیں دے پاتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آ رہے تھے، رات کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، ایک گھر سے ان کو اشعار کی آواز سنائی دی، جس سے پتا چلا کہ ایک جوان بیوی اپنے خاوین کی محبت میں شعر پڑھ رہی. خاوین کی محبت میں شعر پڑھ رہی تھی. چنانچہ وہ گھر آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن لیا. ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ ایک عورت اپنے میاں کے بغیر کتنا وقت آرام سے گزار سکتی ہے؟ انہوں نے کہا، جتنی اللہ تعالیٰ نے عدت متعین کی ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن کی بات ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قانون بنا دیا کہ ہر مجاہد جو جہاد میں جائے گا 4 مہینے کے بعد بالآخر گھر آئے گا. یہاں سے تبلیغ والوں نے نکالا 4 مہینے جاتے، 4 مہینے کے بعد بالآخر گھر آئے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارے گا. سوچئے کہ اگر ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ جیسی پاکیزہ شخصیت، جو امت کی ماں ہے، وہ فرماتی ہے کہ 4 مہینہ کی مدت زیادہ سے زیادہ ہے، تو جو لوگ سالوں اپنی روزی کی خاطر دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، وہ جی جوان بیٹا ہے مگر انگلینڈ چلا گیا اور اس کی بیوی ہمارے پاس رہتی ہے، اب ذرا سوچئے کہ بیوی 1 سال 2 سال خاوین کے بغیر رہے گی تو پھر گھر میں کیا معاملہ ہوگا؟ شیطان کو کتنا موقع ملے گا اس کی بیوی کو ورگلانے کا اور گناہ پر اکسانے کا؟ ادھر بیوی گناہ کرے گی، ادھر خاوند گناہ کرے گا. और अगर गुनाह नहीं करेंगे तो गुनाह की हसरत तो उनके जहन में रहेगी सही, तो फिर भी इबादत में दिल नहीं लगेगा। लिहाजा ऐसी सूरत हाल से बचना चाहिए। मियां बीवी एक दूसरे से 4 महीने से ज्यादा जुदा न हो। हाँ, कभी कोई ऐसी जरूरत एक मरतबा पड़ जाए, जैसे बिलफर्ज कोई 9 महीने के लिए चला गया या साल के लिए चला गया, बीवी भी बखुशी इजाजत दे देती है और खाविन भी राजी है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में यकीनन बीवी अपने वादे का पास करेगी। इसलिए इसके मशवरे से बात तय हुई, मगर आम हालात में हम देखते हैं कि बच्चे दूसरे मुल्क में कारोबार करने के लिए कोई सऊदी अरब गया 5 साल से नहीं आया, कोई फुला वजह से गया 7 साल से नहीं आया। ये बहुत ऐब वाली बात है, बीवी का हक है और ये वक्त देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रोजी मिलती है नहीं मिलती, घर वापस आओ, तुम भी भूखे रहोगे, बीवी भी तुम्हारे साथ भूख बर्दाश्त कर लेगी, उसे तुम्हारी जरूरत है, उसे मुरगन गिजाओ की जरूरत नहीं है। लिहाजा उस बात को भी जहन में रखना चाहिए और ये खतरनाक गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि इंसान अपनी बीवी को वक्त न दे। ये बात वक्त न देने की, वक्त न देने की बात नहीं थी, क्या थी ये गलती? हाँ, वक्त के पर बात चल रही थी। ये अब मुकम्मल 5वीं गलती, वक्त न देना। अब 6ठी गलती, बीवी के लिए पाबंदी और अपने लिए आजादी। हाँ, उसके लिए तो पाबंदी और खुद आजाद। 6ठी खतरनाक गलती आमतौर पर जो खाविन कर लेते हैं जी, वो ये कि घर में तो उसूलों की पाबंदियां करवाते हैं, मगर खुद उसूल की पाबंदी नहीं करते। ये बहुत बड़ी गलती है। बीवी को तो कहते हैं कि तुमने कजिन से पर्दा करना है, कजिन से बात नहीं करनी, लेकिन जब अपनी कजिन आती है तो फिर पर्दा नहीं करते तुम, उस पर पाबंदी और अपने पर आजादी। खुद उससे हंस हंस कर बातें करते हैं, हंस हंस कर बातें करते हैं। बीवी को कहते हैं कि तुमने नामहरम की तरफ देखना भी नहीं, और खुद बीवी की मौजूदगी में नामहरम लड़कियों को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। फिर ये झगड़ा नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? झगड़ा नहीं हो तो क्या बने? उसूल सबके लिए है। अगर उसूल बीवी के लिए है तो उसूल आपके लिए भी। मुझे कैलिफोर्निया में एक ऐसी ही खातून मिली, औरत मिली जो नेक थी। उसका खाविन उसको फुल हिजाब में रखता था, फुल हिजाब, मगर अपने लिए आजादी। बेचारा कोई गैर मुकल्लिद किस्म का नौजवान था, समझ गए, दिमाग का ईमानी बीमार कोई ऐसा नौजवान था। बीवी को कहता कि तुम्हारे लिए हिजाब का हुक्म है। मजे की बात देखिए कि एक मर्तबा छुट्टी के दिन बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, मैं तुम्हें बीच पर लेकर जाता हूं। वो बीच पर लेकर गया, समझ गए, साहिल पर, समंदर के किनारे, हाथ में दस्ताने, मोजे, हाथ में दस्ताने पहनाए और पूरा निकाब वाला बुरका पहनाया और पांव में भी मोजे पहनवाए। तो बीवी को तो इस तरह पहना कर गया और खुद उसने शर्ट पहन ली और उसकी राने आधी नंगी, पाजामा भी पूरा नहीं, आधा नीचे का भी आधा, सतर खुला। तो बीवी को तो उसकी राने आधी नंगी और वो बीच पर बीवी को लेकर जा रहा है। ओ मियां, तुम जरा अकल के नाखून तो लो, तुम्हारी अकल मारी गई है, तुम्हारी अकल चली गई है। बीवी के लिए तो इतनी पाबंदियां और अपने लिए तुम्हारी ये हालत है कि शर्ट पहनकर आधी रानी नंगी करके तुम दूसरी जगह जा रहे हो जहां दूसरे गैर मुस्लिम लड़कियां भी नंगी फिरती है, और फिर वो खुद तो गैर मुस्लिम लड़कियों को देखता रहता है, यहां तक के कमेंट्स तबसरा भी देता है कि ये लड़की ऐसी है, ये लगी है। उसको तो पर्दे में रखा और उसको कहता जा रहा है कि ये ऐसी है, ये ऐसी है। अब सोच सकते हैं इसकी बीवी के दिल पर क्या गुजर रही होगी, क्या गुजर रही होगी कि मुझे तो उसने यूं कैद में बिठा दिया है और खुद अंग्रेज लड़कियों को फकत चंद इंच के कपड़ों में जो वो नहाते हुए पहनती है उनमें चलते हुए देखता है और फिर कमेंट्स भी देता है, हालात भी बताता, उसकी चाल ऐसी, उसकी शक्ल ऐसी, उसका फुला ऐसा, तो ये तो खाविन की इंतहाई बेवकूफी होती है। ये कहना चाहते हैं कि छठी गलती क्या है, खुद तो बीवी के लिए पाबंदी और अपने लिए आजादी। बहरहाल ये एक बात समझने की है कि जब भी इंसान घर में उसूल बनाए तो उसूल सबके लिए होने चाहिए। अगर बीवी के लिए उसूल है तो खाविन के लिए भी वही उसूल होने चाहिए। अगर खाविन पाबंदी नहीं करेगा ठीक है, अगर बीवी के लिए उसूल है तो खाविन के लिए भी उसूल होने चाहिए। अगर खाविन पाबंदी नहीं करेगा तो फिर बीवी से पाबंदी की क्या तवक्को और उम्मीद कर सकते हैं कि बीवी को तो कहे कि तुम नेक बन कर रहो और खुद बैठा हुआ केबल देख रहा है, समझ गया, और बैठा हुआ नेट की फिल्में देख रहा है, फिर तो घर के अंदर झगड़े ही होंगे ना, लड़ाइयां ही होंगी। लिहाजा ये गलती भी कभी करनी नहीं चाहिए। बीवी को तो पर्दे में और खुद नेट देख रहा है, तो जब वो नहीं है तो हम भी ना देखें। तो छठी गलती, पहली गलती क्या थी, इग्नोर करना। दूसरी गलती तलाक की धमकी। तीसरी गलती दूसरी शादी की धमकी। चौथी गलती बेइज्जत करना। पांचवी गलती वक्त न देना। और छठी गलती फ्रीडम, खुद के लिए बीवी के लिए पाबंदी और खुद के लिए फ्रीडम। अब सातवीं गलती नुक्ताचीनी की आदत, यानी ऐब ढूंढना, ऐब ढूंढने की आदत। सातवीं खतरनाक गलती जो आमतौर पर खाविन कर लेते हैं वो यह है कि बीवी की छोटी छोटी बातों पर टोकना, पकड़ना, छोटी छोटी बातों पर पकड़ना, उसको कहते हैं नुक्ताचीनी। हत्ता कि ये नुक्ताचीनी यहां तक बढ़ जाती है हर वक्त बीवी को शक की नजर से देखने लग जाते, बीवी को शक की नजर से देखने लग जाते। ये शक एक मरज है। शक क्या है, एक बीमारी है। ये शक एक मरज है। अगर किसी को यह मरज लग जाए तो वो फिर हवा पर भी तनकीद करने लग जाता, अगर ये तो हवा के अंदर भी नुक्स निकालेगा, फिर वो किसी को छोड़ता नहीं, फिर मस्जिद में आएगा, अरे यार देखो सफाई नहीं किया, उंगली लगाई और देखेगा, है कि नहीं? तो वो फिर किसी को, फिर मस्जिद में सब लोग उसे परेशान, घर में बीवी बच्चे परेशान और कारोबार में भी सब वर्कर परेशान। तो ये छोटी छोटी गलतियों पर फरमाए नुक्ताचीनी, देखते रहना। अगर किसी को मरद लग जाए तो फिर हवा पर भी तनकीद करने लग जाता है कि इस वक्त ये क्यों चल रही है, मेरी बीवी को कोई मैसेज पैगाम तो नहीं लाकर दे रहे, हवा पर भी शक, मेरी बीवी को कहीं पैगाम तो नहीं दे रहा जी। अल्लाह जी बार बार तो फरमाया मेरी बीवी को कोई ये हवा पैगाम तो नहीं लाकर दे रही है, हमने तो यहां तक देखा कि शक वाले बंदे का हाल इतना बुरा होता है, शक्की इतना बुरा होता है कि उसकी बीवी अपने सगे भाई से बात करते हुए जरा मुस्कुरा पड़ती है तो खाविन के दिल में अंदर शक पड़ जाता है कि सगे भाई से मुस्कुराकर बातें क्यों कर रही है। यह शक की बीमारी बहुत खतरनाक होता है, शक की बीमारी। उसका आप अंदाजा तो कीजिए क्या अकल पर पर्दे पड़ गए कि एक शादीशुदा लड़की अपने भाई से भी प्यार से बात नहीं कर सकती तो फिर किससे कर सकती। इसकी बुनियाद वही तनकीद वाली तबीयत है, छोटी छोटी बातों पर नुक्स निकालने की आदत, वो चैन सुकून से रहने नहीं। कई लोगों को देखा कि दस्तरखान पर आकर बैठेंगे, दस्तरखान पर आकर बैठेंगे और दस्तरखान के ऊपर बहुत किस्म की चीजें बनी हुई पड़ी है, मगर उनमें से अच्छी चीजों की तारीफ करने के लिए उनकी जबान से एक लफ्ज नहीं निकलेगा। आपका कान पर आना पड़ा हुआ है, अच्छी अच्छी चीजें है, लेकिन इसकी तारीफ करने के लिए जबान से एक लफ्ज नहीं निकलेगा। अगर चटनी में नमक ज्यादा है तो फौरन कहेंगे अरे चटनी में नमक ज्यादा है, तारीफ करने के लिए जबान नहीं खोलेंगे, नुक्स निकालने के लिए जबान खोलोगे ना, कांटे दिखते हैं, फूल तो दिखता ही नहीं, कांटे दिखते हैं, तो फौरन क्या चटनी में नमक ज्यादा है या फुला चीज में ज्यादा है, तनकीद तो फौरन कर देते हैं और तारीफ की कभी तौफीक नहीं होती। एक जगह मेरा जाना हुआ, वहां पर एक वजीर साहब थे, वहां पर एक वजीर साहब थे, उनकी बीवी ने अपने मियां की बात बताई, बीवी ने अपने शोहर की बात बताई, किसको, मुझे, यानी जो हजरत जो गए थे, मियां की बात बताई कि सारी जिंदगी मैंने उनके खाने खुद पकाए लेकिन आज तक उन्होंने खाने की तारीफ नहीं, सारी जिंदगी खाने की तारीफ नहीं की, जितने मेहमान आते हैं तारीफ करके जाते हैं लेकिन ये अल्लाह का बंदा नहीं करता, तारीफ करके जितने लोग आते हैं तारीफ करके जाते हैं, और हमारे लिए भी जो खाना पका था हजरत के लिए इतना अच्छा था, हमने खाविन से कहा कि खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा था। अब जब उसने ये बात बीवी को बताई तो बीवी आग बगोला हो गई कि तुम्हें तो कभी तौफीक न मिली दो लफ्ज कहने की, चुनांचे हमें इस वक्त एहसास हुआ कि बहुत बड़ी गलती होती है कि इंसान छोटी छोटी चीजों पर नुक्ता चीनी यानी गलती तो फौरन शुरू कर दे और उसकी जबान से कभी खैर की बात न निकले। इसलिए अपनी बीवी की नुक्स छोटे छोटे न निकाले बल्कि जो अच्छा काम किया है उसकी तारीफ खूब करे, तो माशाल्लाह आज तो घर में बहुत अच्छे खुशबू है, तारीफ करो, ओ आज तो माशाल्लाह सफाई बहुत अच्छी है, तो ऐसी कोई ना कोई आज तो खाना क्या टेस्टी बनाए, तो उसके मोहब्बतें बढ़ती है। हाँ, क्योंकि ये घरों में मियां बीवी की जिंदगी कैसे अच्छी रहे ये उसके रूल्स है, रूल्स में से एक क्या है कि हम कभी तारीफ ही नहीं करते और नुक्स जल्दी निकाल देते। आज के बाद से क्या करना है, नुक्स नहीं निकालेंगे, फूल ही देखेंगे, कांटा देखना ही नहीं कि इसमें कांटा लगा हुआ है, फूल देखना, तो इंशाल्लाह, तो उसके लिए क्या है छोटी छोटी बातों में कोई नुक्स न निकाले। कई नौजवानों को देखा कि बाहर दोस्तों की महफिल में वो गुलाब के फूल बने हुए होते हैं, दोस्तों की महफिल में गुलाब के फूल बने हुए होते हैं और जब घर के अंदर आते हैं तो करेला नीम चढ़ा बने होते हैं। अरे करेला समझे ना, खाया कभी करेला? नहीं खाया। करेला कड़वा होता है, पता है ना, उसकी सब्जी बना दे, लेकिन वो करेला जो नीम के ऊपर अगर उसकी बेल चढ़ती है तो डबल कड़वा होता है, इसलिए करेला नीम चढ़ा बोलते हैं, क्योंकि नीम कड़वा होता है, तो इसलिए उसको कहवत होगी कि करेला नहीं है, करेला तो कड़वा है लेकिन जो नीम पर बना हुआ तो डबल कड़वा होता है। तो क्या घर में आते हैं तो क्या करेला नीम चढ़ा बन जाता है और दोस्तों में जाता है तो फूल बन के रहता है। ऐसे कड़वे के बंदा थू थू कर दे यू बन के घर में आते हैं तो फिर बीवी को घर में कैसे सुकून मिलेगा। इसलिए सातवीं गलती कभी नहीं करनी चाहिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए लचक जरूरी है। आजकल साइंसदान लोग मशीन बनाते वक्त इस उसूल को मद्देनजर रखते हैं कि बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस समझे, परफॉर्मेंस के लिए लचक जरूरी है। लिहाजा वो लोग जब कोई मशीन बनाते हैं या रोबोट वगैरह बनाते हैं तो उनमें भी क्लियरेंस एंड टॉलरेंस, इस्लाह और लचक रखी जाती है, एकदम टाइट नहीं बनाते ना तो वो टूट जाएगा, उसके अंदर लचक होती है, उसको कहते हैं लचक, तब पुर्जे आपस में फिट होते। तो जब हर चीज में लचक रखी जाती है तब वो सही काम करती है, तो फिर घर में भी क्लियरेंस और टॉलरेंस होनी चाहिए, एकदम टाइट मत बनाओ कि टूट जाओ, समझ आ गए? तो वो है, ऐसी हर चीज में एक एक चीज टोकते रहोगे तो कड़क हो गया, और कड़क होकर टूट जाएगा, कुछ छोड़ भी दो। क्योंकि मशीन भी अगर इस तरीके से करो तो मशीन भी नहीं चलेगी। तो घर की जो मशीन है, बीवी जो है, उसको भी अगर संभालना है और अच्छी तरीके से घर में मोहब्बतों से जिंदगी गुजारनी है तो थोड़ा उसमें लचक रखनी पड़ेगी। कई लोगों को देखा कि घर में बच्चों पर नुक्ताचीनी करने की आदत होती है, बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी बातों पर टोकना, जरा सा ऊंचा बोल पड़े तो कहे जोर से क्यों बोला, ऊंचा बोल पड़े, अरे बच्चे हैं, खेल कूदेंगे नहीं, भागे दौड़ेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे। अब बच्चों को भी टोकता, तू क्यों कूदता है, अरे तू क्यों भाग रहा है, वो कहेंगे तो बच्चा थोड़ी को समझेगा तुम्हारी बात, तो फिर मैं वो क्या करेगा। तो ये छोटी छोटी बातों पर उसको टोकना ये बुरी आदत होती है। उसूली बातें हो उनको समझाना चाहिए, बड़ी बातों को बताना चाहिए और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। खाविंदों को कुछ चीजें बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। अच्छा, तो दुनिया में ही घर जन्नत बन जाते जी। तो फरमाया बड़ी बातों को बताना चाहिए, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। खाविंदों को कुछ चीजें बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। छोटे बच्चों की बातें या बीवी की ऐसी बातें बर्दाश्त करनी चाहिए। हाँ, कोई बात बड़ी बात है जो उसूल के खिलाफ है, शरीयत में गुनाह है, उस पर तो वाकई एक्शन लेने की जरूरत होती है, मगर मामूली बातों में नुक्ताचीनी ये तो वाहियात सी बात है, किसी ने क्या अच्छी बात कही है। टू रन ए बिग शो वन शुड हैव ए बिग हार्ट। बड़ा बड़ा शो चलाने के लिए बंदे को दिल भी बड़ा कर लेना चाहिए। दिल बड़ा होगा तो बड़ा काम कर सकूंगी, दिल तो छोटा सा बनाया है तो फिर बड़े बड़े काम कर ही नहीं सकते, कि तुम छोटी छोटी बातों पर देख रहे हो तो काम नहीं हो सकता। चुनाचे भी बुरी बात है कि इंसान हर वक्त नुक्ताचीनी करता रहे और दूसरे को शक की नजर से देखता रहे, तो ये सातवीं गलती। सातवीं गलती क्या थी? नुक्ताचीनी। नुक्ताचीनी क्या थी? तो पहली गलती इग्नोर करना, दूसरी गलती तलाक की धमकी, तीसरी गलती दूसरी शादी की धमकी, चौथी गलती बेइज्जत करना घर वालों के सामने, बच्चों के सामने, और पांचवी गलती वक्त न देना, और छठी गलती अपने लिए आजादी, और सातवीं गलती नुक्ताचीनी। अब आठवीं गलती, तीसरे बंदे की खातिर बीवी से झगड़ा, किसी और से, और की वजह से मियां बीवी में झगड़ा हो जाए। ये सुनो जरा, आठवीं और खतरनाक गलती है इंसान दूसरों की वजह से अपनी बीवी से झगड़ता है, ये बहुत बड़ी गलती है। इस आजिज का तजर्बा है, मियां बीवी एक दूसरे से कभी नहीं झगड़ते, कभी भी नहीं झगड़ते, जब भी झगड़ते कभी ना कभी थर्ड पर्सन तीसरा बंदे की वजह से झगड़ते। अब वो कैसे जरा समझो, वो तीसरा बंदा कौन होता है? या तो वो खाविन की माँ भी हो सकती है, यानी खाविन की माँ, उनकी सास, तो वो भी हो सकती है, खाविन की बहन भी हो सकती है, बीवी की माँ बाप भी हो सकते हैं, बीवी की बहन भाई भी हो सकते हैं। क्योंकि उधर बीवी को यानी अपनी बेटी को माँ ने कुछ बताया, अब इधर अगर वो झगड़े की शोहर से, अरे तुरु को ऐसा करना, और इधर शोहर की माँ ने उसको कुछ बताया, जाके बीवी को सीधा सवार हो जाएगा, तो हुआ ना। तो तीसरी की वजह से बीवी से झगड़ा करना, या बहनों ने कुछ बता दिया, अरे तुरु को ऐसा रहना है ऐसा करना है, तो वो बीवी से आकर झगड़ा, या बीवी की बहनों ने कुछ बता दे शोर से आकर झगड़ दी। समझ में आ गया भाई? आज यही तो होता है। तो फरमाया तो बीवी के बहन भाई भी हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, या कोई और चीज भी हो सकती है, हमेशा तीसरे की वजह से मियां बीवी के दरमियान झगड़े होते हैं। लिहाजा किसी तीसरे की वजह से कभी भी आपस में नहीं झगड़ना चाहिए, और तीसरे को भी ख्याल करना चाहिए कि कोई ऐसी बात न करे जिससे मियां बीवी के दरमियान झगड़े हो। याद रखना, लैलतुल कदर में सब बंदों की बख्शीश हो जाती है, चंद बंदों की बख्शीश नहीं होती। حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایک وہ بندہ جس کے دل میں مومن کے بارے میں کینہ ہوتا ہے، مومن کے معنی میں ہمارے دلوں میں کینہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرتے، اور ایک وہ بندہ جو کسی میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا کھڑا کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ مارکیٹ میں ایسے ہیں جو کہیں میاں بیوی میں جوڑ ہوتا ہے تو اس کو لگاتا ہے اس کو لگاتا ہے، اور آپس میں جھگڑا کے پھر دیکھتا ہے مزہ آتا ہے اس کو، وہ آپس میں محبت سے رہے ان کو مزہ ہی نہیں آتا۔ بعض تو رشتے داروں میں ایسے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کون اچھی طریقے سے، بس وہ آ کر کچھ نہ کچھ بات لگا دیتے، پتا نہیں کہاں سے لے کر آتے، اور جب آپس میں دونوں جھگڑے پھر وہ ذرا مزہ آتا ہے، ہاں یہ اچھا ہوا، ہم بھی جھگڑتے تو یہ بھی جھگڑنا چاہیے، یہ کیوں محبت سے رہے، کچھ نہیں ہوتا، وہ بس وہ کہ جیسے ہم ویسے تم رہو، یہ ہوتے ہیں، اس کو ان کو دیکھا ہی نہیں جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، تو وہ بندہ کسی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کھڑا کر دیتا ہے، اس کی لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور ان کے درمیان نفرت ہوتی ہے۔ اچھا، تو اور ان کے درمیان نفرت اور دوری کا باعث بن جاتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایسے بندے کی شب قدر کے اندر بھی مغفرت نہیں کی جاتی، لہذا سانس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کر دی جس کی وجہ سے میرے بیٹے نے بیوی سے جھگڑا کر لیا تو میں کہیں ان میں تو شامل نہیں ہو جاؤں، یہ نہیں کرنا چاہیے، دل بڑا رکھنا چاہیے۔ اب شادی ہو گئی ہے تو اب ظاہر بات ہے اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیٹے کی ماں یعنی وہ سانس وہ اس کو کچھ نہ کچھ بولتا رہتا اور اس کا دماغ پھر خراب ہوتا ہے، جا کے بیوی پر غصہ نکلتا، کیونکہ یہ شکایتیں بہت آتی ہیں، کیونکہ جوائنٹ فیملی کے اندر خاص کر کے، کیونکہ اب یہ ہوتا ہے نا بیچ میں آ گیا، ادھر بیوی سناتی ہے ادھر ماں سناتی ہے، اب بیچ میں پھر، اس لیے ہمارے استاد فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ نے دو کان رکھے، ایک کان سے ماں کی سنو، دوسرے کان سے بیوی کی سنو، اور دماغ بیچ میں رکھا ہے اور پھر دماغ سے فیصلہ کرو۔ تو دو کان سے کیا، خالی ایک ہی کان سے مت سنو، ایک کان سے ماں کی سنو، ایک کان سے بیوی کی سنو، اور پھر اس میں جلدی مت کرو، دماغ رکھا ہے اس کو سوچ سمجھ کر پھر فیصلہ کرو، ورنہ جھگڑوں گے۔ ہاں یہ بیچ میں بےچارا سینڈوچ بن جاتا ہے، کسی نے لکھا سینڈوچ بنا، ہاں وہ مثال کیا کروں، پھر وہ بےچارا تھوڑے دن تو سنتا رہتا ہے، پھر اس کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، یا تو ماں پر برس پڑتا ہے یا بیوی پر برس پڑتا ہے۔ اب پھر ایک تو کاروباری ٹینشن ہوتا ہے، پھر اوپر سے یہ دو ملے تو بولے کروں کیا، پھر بھاگ جاتا ہے، یار یار چین سکون نہیں ملے گا، تو پھر تو ایسے بندے میرے پاس بھیج دینا، سمجھے نا، ایسا جو بھی میرے پاس بھیج دینا، ہاں ہاں کیا کریں گے، نہیں کچھ تو چار مہینہ جماعت میں چلے جاتے ہیں۔ تو بےچارا بن جاتا ہے۔ تو فرمایا جھگڑا کر لیا تو جس کی وجہ سے میرے بیٹے نے بیوی سے جھگڑا کر لیا، اگر کوئی سی بات کر دی تو میں کہیں ان میں شامل نہ ہو جاؤں، یعنی لیلۃ القدر میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ سسر کو بھی یہی سوچنا چاہیے اور ننن کو بھی یہی سوچنا چاہیے، رشتے داروں کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی بات ایسی نہ کرے کہ ہماری وجہ سے میاں بیوی کے درمیان فاصلہ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے۔ اگر فاصلہ ہو گیا تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شب قدر میں بھی بخشش نہیں کریں گے، اور آج کل تو اگر یہ نہ کرے تو ان کا تو پیٹ میں درد ہوگا، ننن بھی چین سکون سے نہیں بیٹھ سکتی، بولے ضرور ان لوگوں کو جھگڑنا۔ ہاں آج تو یہ عام ہو گیا، دیکھا ہی نہیں جاتا ان لوگوں کو کہ دونوں کی آپس کی محبت دیکھی نہیں جاتی۔ تو فرمایا شب قدر میں بھی اس کی بخشش نہیں، اب اندازہ لگائیے جو لوگ سن رہے ہیں کہ ایسا کبھی نہ کرے۔ لہذا میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ کسی تیسرے کی وجہ سے ہرگز نہیں جھگڑنا چاہیے۔ اب آج کل تو کچھ نہیں ملتا تو موبائل پر بےچارا بات کر رہا ہوتا ہے شوہر، تو یا کوئی نہ کوئی دیکھ لیتا ہوتا ہے، تو پتا ہے تو نہیں تھی گھر میں، میں نے دیکھا وہ بات کر رہی تھی کسی سے، لگا دیا۔ اب وہ کس سے بات، اس کی بہن سے بات ہو رہی تھی کس سے، نہیں تو دیکھ کسی سے بات ہو گیا، اب وہ بےچاری بیوی شک میں آ گئی، اب کیا کرا، اب اس نے جھگڑا شروع کر دیا، कि हाँ अब किसी तीसरे की वजह से हुआ, जब तक वो बेचारी मुतमइन थी कि बस मेरे शोहर ठीक है, लेकिन किसी ने कुछ लगा दिया, देखिए कुछ नहीं। तो भाई तो ये आठवीं गलती क्या है, तीसरे बंदे की खातिर बीवी से झगड़ा। और नौवीं गलती बताऊं कि छोड़ दू, सुनो अभी टाइम है, घबराना नहीं, दिल बड़ा रखना। ये क्या है मौलाना, हमारी तो बराबर पिटाई कर रहे हैं, तो उनकी भी पिटाई होगी। नौवीं खतरनाक गलती तो बस रही, नौवीं खतरनाक गलती खामिन ये करते हैं कि छोटी छोटी बात पर अपनी बीवी पर शक करते हैं, छोटी छोटी बातों पर अपने बीवी पर शक करते हैं या इल्जाम लगा देते हैं। ये जो इल्जाम की बात है बहुत बुरी बात होती है। खाविन ने देखा बीवी फोन पर बात कर रही होती है, वो बता भी देती है कि मैंने फुला से बात की है, नहीं 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 तुम्हें किसी किसी का फोन आया होगा, इस किस्म के शक में नहीं पड़ना चाहिए, इस किस्म के शक में नहीं पड़ना चाहिए। जब तक कोई ठोस बात सामने ना आए, पक्की बात या शरी दलील मौजूद ना हो, छोटी छोटी बातों पर शक में आ जाना और इल्जाम लगा देना, ये घर की बुनियाद फाउंडेशन को उखाड़ देती है। याद रखना, बीवी खाविन का हर जुल्म बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन खाविन का इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। इल्जाम लगाना नहीं तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं, वो पाक दामन है और तुम ऊपर से शक कर रहे हो, तो बेचारी परेशान हो जाएगी, तो उसको प्रोटेक्शन नहीं मिला, हिफाजत नहीं मिली। हाँ, और जरूरी नहीं कि कोई अखलाकी इल्जाम ही हो, और भी छोटे छोटे इल्जाम बीवी पर लगाते रहते हैं, ये नुकसान हुआ तेरी वजह से हुआ, अरे बच्चे बिगड़ गए तेरी वजह से, और फुला काम वक्त पर नहीं हुआ तेरी वजह से, मैं ऑफिस में लेट हो गया तेरी वजह से, ये सब इल्जाम ही तो है। तो जिन खाविंदों की ये आदत हो, जरा जरा सी बात पर बेटे ने बात न मानी तो बीवी को कहा तूने बिगाड़ दिया है, बच्चे ने बात तूने बिगाड़ दिया है, अरे साहब आप भी तो बाप थे, आपने कौन सा उसे सवारा है और बनाया है, आप भी बिगाड़ने में बराबर के शरीक है, खाली मेरे पर इल्जाम डाल दिया। तो ये जो बीवी को जरा जरा सी बात पे इल्जाम देता है, तो ये जरा जरा सी बात में जो इल्जाम देता है, इल्जाम दे देना कि हम वक्त पर वहां नहीं पहुंचे तुम्हारी वजह से, हालांकि देर बच्चों ने कर दी थी या कोई और वजह बन गई थी, बहुत बड़ी खतरनाक गलती होती है, ऐसी गलती भी नहीं करना चाहिए। यानी बात बात पर उसको इल्जाम देना, भाई हो गया लेट होना तो हो गया, लेकिन अब इल्जाम मत दो बार बार करना, तो उसके जरिए से क्या दिल को तकलीफ पहुंची है कि नहीं, वो बोलते कुछ नहीं। अब दिल को तकलीफ पहुंची तो एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना कितना बड़ा गुनाह है, बैतुल्ला को गिराने से भी बड़ा गुनाह है। आज बैतुल्ला को गिरा तो सब गर्म हो जाएंगे, और तू बीवी को तकलीफ पहुंचा रहा है उससे बड़ा काम कर रहा है, और तू कुछ भी नहीं सोच रहा। एक बीवी को अगर इल्जाम लगाया कि नहीं तेरी वजह से हुआ तेरी, एक आध मरता हुआ तो ठीक है कभी हो जाता है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक कई मरतब कहते रहना, इसके दिल को तकलीफ होती है, फिर उसके दिमाग में परेशानी आती है। तो नौवीं गलती इल्जाम लगा, और दसवीं गलती बीवी के रिश्तेदारों से कोई ताल्लुक न रखना शोहर का। वो होते हैं भाई तो तेरे रिश्तेदार, क्यों भाई तेरे नहीं, नहीं दोनों के है, अभी बीवी के जो रिश्तेदार है वो बिल्कुल मेरे ही रिश्तेदार गिने जाएंगे। जैसे अपने रिश्तेदारों के साथ तुम जैसा मामला करते हो, वैसा ही मामला अपनी बीवी के रिश्तेदारों से भी करना है। उसके माँ बाप भी अपने माँ बाप है, उसके भाई बहन अपने भाई बहन है, उसके भी जितने खाला है चाचा है वो हमारे ही है, अब हमारी डबल रिश्तेदारियां हो गई। दसवीं और आखिरी गलती है, आमतौर पर जो खाविंद लोग करते हैं वो ये कि बीवी को कहते कि तुमसे तो मुझे प्यार है, बीवी को क्या कहते कि तुमसे तो मुझे प्यार है मगर तुम्हारे अब्बू अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे अब्बू अच्छे नहीं लगते। अल्लाह तुम्हारे अब्बू मुझे अच्छे, अब बताओ तूने जब ये बोल दिया कि तुम्हारे अब्बू अच्छे, तो भी तेरा प्यार क्या हुआ, तुम्हारे अबू अच्छे, अम्मी अच्छी नहीं लगती, मुझे तुम्हारे भाई भी अच्छे नहीं लगते। औरत को अगर ये कह दिया जाए कि इसके करीब के महरम मर्दों से मुझे नफरत है, तो सोचिए कि फिर उस बच्ची के दिल पर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी। इसलिए कि बीवी का अपने वालिदैन के साथ फरमाया, इसलिए कि बीवी का अपने वालिदैन के साथ ताल्लुक जज्बाती लगाव में दाखिल है और फितरी चीज है। अब बीवी है, उसके माँ बाप के साथ उसका एक ताल्लुक तो होगा ही, वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते ऐसे जुमले। तुम तो उसके माँ बाप के बारे में ऐसे जुमले बोलो तो नहीं बता। अगर बीवी हमारे माँ बाप के बारे में बोल दे तो क्या करोगे बताओ, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर हम भी उसके माँ बाप के बारे में बोलने जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि वो हमारे ही माँ बाप कभी बर्दाश्त नहीं करे कि उसके वालिदैन के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करे। अगर वो किसी मजबूरी की वजह से खामोश भी हो जाएगी तो दिल तो उसका जरूर दुखेगा, दिल उसका जरूर दुखेगा। उसकी मिसाल ऐसी समझे कि खाविन के अपने वालिदैन के बारे में बीवी कुछ ऐसी बातें कर दे, बीवी अपने खाविन के वालिदैन के बारे में ऐसी बातें कर दे तो खाविन के दिल पर क्या गुजरती है, बस वही समझ लो कि उसके दिल पर भी गुजरेगी। इसी तरह जब खाविन बीवी के वालिदैन के बारे में बात करता है तो उसके दिल पर भी वही गुजरता है। तब ये बात भी एक लड़ाई का जरिया बनती है कि खाविन चाहता है कि मेरे रिश्तेदार मुतमईन रहे और बीवी चाहती है कि मेरे रिश्तेदार मुतमईन रहे। इनके लिए एक बेहतरीन उसूल ये है कि शादी से पहले उनका एक बाप और एक माँ थी, अब शादी के बाद दो बाप और दो माए बने। बीवी के लिए भी दो बाप और दो माए और शोहर के लिए भी दो बाप और दो माँ। सुनना, इस उसूल से अगर चलेंगे ना तो कोई तकलीफ नहीं। आज उसको अपना माँ बाप समझते हैं, अपने माँ बाप समझे, बल्कि उनको और ज्यादा उसके माँ बाप को प्यार दे ताकि लगे ही नहीं कि थोड़ा अपने माँ बाप तो वैसे अपने ही हैं, उनको तो कम भी देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन बीवी के माँ बाप के हम ज्यादा प्यार दे ताकि बीवी के दिल में इत्मीनान हो कि नहीं मुझे समझ रहे हैं। तो फरमाया, तो जब बीवी तो दो बाप दो माए, क्योंकि शरीयत ने सास और ससुर को माँ और बाप का दर्जा दिया, तो जब बीवी सास और ससुर को माँ और बाप का नजर से देखेगी तो झगड़ा ही नहीं रहेगा। इसी तरह जब खाविन भी सास और ससुर को माँ बाप की नजर से देखेगा तो लड़ाई का कोई मसला ही नहीं रहेगा। खाविन के जितने रिश्तेदार हैं इन सब के साथ शरीय तरीके पर अच्छा ताल्लुक रखना चाहिए, उनको मुतमईन रखना बीवी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और खाविन की जिम्मेदारी ये हो कि बीवी के रिश्तेदारों को खुश रखे। जब घर में जिम्मेदारियां इस तरह तकसीम हो जाए कि बीवी हर वक्त सोचे कि मैं अपने मियां के रिश्तेदारों को हर वक्त कैसे खुश रख सकती हूँ, उसकी अम्मी को खुश रखूं, उसकी बहनों को खुश रखूं, उसके दूसरे रिश्तेदारों के साथ भी बनाकर रहनी चाहिए, और खाविंद ये सोचे कि मैं किस तरह अपनी बीवी के रिश्तेदारों को अच्छा रखूं, तो फिर दोनों के दरमियान झगड़े का कोई मसला ही नहीं बने। अल्लाह, लेकिन आजकल ये सबक पढ़ाया ही नहीं जाता, लेकिन आजकल नौजवान तो आम तौर पर ही गलती कर लेते हैं, वो नहीं समझते इसकी कितनी अहमियत है। इसलिए कहते हैं कि खबरदार तुमने अपने घर नहीं जाना, फिर बीवी को क्या कहते हैं, खबरदार तुम्हें वहां नहीं जाना, खबरदार तुमने अपने घर वालों से बात नहीं करनी। ये मामला बड़ा अजीब है, नहीं कहते बीवी बेचारी चाहती है कि अपने मेके जाए अपने माँ बाप के पास, नहीं तुम्हें नहीं जाना, हाँ अरे तुम्हें घर वालों से बात नहीं करनी, अगर बात की तो धमकी। अब ये सब क्या है, उसका मतलब वो तुम्हारे माँ बाप नहीं है, बल्कि तुम्हें जाना है कि चलो हम जाएंगे, बहुत दिन हो गए हम अम्मी अब्बू से मिले नहीं है, बस साथ में चलो, फिर वहां उनको एक दिन रखो जरूरत हो तो। बोले ठीक है तुम कल आ जाना, मैं जाता हूं अपने काम के लिए। तो इस तरीके से मोहब्बतें बढ़ती है, आज तो भेज भी अच्छा तुम जाओ, यानी उसको अपना समझा ही नहीं, बल्कि ये ऐब गिना जाता है। सास और ससुर जो बीवी के माँ बाप होते हैं, तो शोहर जाएगा तो पब्लिक, अरे तो क्या यार कैसे कहां जा रहा है, वो ऐप गिना जाता है। तो ये कभी चला भी गया ना चुपके से, पता चल गया तो लोग तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, अरे तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कहेगा बेचारा मैंने कोई गलती तो नहीं की, वाकईतन कोई शरीयत के खिलाफ काम कर लिया। हाँ तो याद रखो कोई शरीयत के खिलाफ काम नहीं किया, शरीयत के मुताबिक, क्योंकि आज लोग टोकने कब आते हैं, जब तुम शरीयत के मुताबिक काम करोगे तो ही तुम्हें बोलने आएंगे, और तुम जितना शरीयत के खिलाफ काम करोगे तो तुम्हें कहेंगे माशाल्लाह बहुत अच्छा काम। आज पब्लिक की आदत है कि बताओ, जब भी हमें कोई कहने के लिए समझना चाहिए कि ये कोई गड़बड़ ही चल रहा है। तो फरमाया बिल्कुल, एक मर्तबा यूएई में एक जोड़ा जो बैत था, यूएई उसका मामला इस आजीज के सामने आया। मामला क्या था कि खाविन साहब अगरचे दीन की मेहनत पर काफी वक्त लगाने वाले थे, दीन की मेहनत पर काफी वक्त लगाने वाले, कई महीने और चिल्ले लगाने वाले थे, दीनदार और नेकोकार थे, मगर घर के अंदर उनका मसला था। क्या मसला? उनकी बीवी आलिमा थी, इंडिया में एक बड़े मदरसे से फारिग होकर आई थी और दीन का काम कर रही थी, और बिचारे ने और बिचारी ने एक मर्तबा एक फकरे के अंदर कुछ अपने दिल का गम कह डाला। एक जुमला हजरत की मुलाकात की, दोनों उनसे बैत होंगे, तो उस बीवी ने अपने बात बात में एक जुमला अपना पूरा गम उसमें बयान कर दिया कि मुझे गम कह डाला कि मुझे बहुत मुसीबत है। अब दोनों दीनदार हैं, बीवी भी बेचारी दीन वाली है, पढ़ी लिखी है, दीन का काम करती, शोहर भी कर रहा है, परेशान हूं दुआ कीजिए। बस बीवी ने इतना जुमला कह दिया, बहुत परेशान हूं दुआ कीजिए। चुनाचे मैंने मियां बीवी दोनों को बुलाया, क्या जाओ, और दोनों को बुलाकर जब बात पूछी कि घर के हालात पूछे, मियां तो कहने लगे जी हम बड़े सुकून वाली जिंदगी गुजार रहे। क्या कह रहे? बड़े सुकून वाली जिंदगी गुजार रहे, मगर खामोशी से बैठी हुई बीवी रोने लग गई। वो रोने लग गई, उसने कोई लफ्ज भी न कहा। अल्लाह, इस आजीज ने समझ लिया, क्योंकि हजरत तो अल्लाह ने अजीब फिरासत दी है, इस आजीज ने समझ लिया कि कहीं ना कहीं दरमियान में कोई मसला है। लोग अपनी बातें बताते हैं, पीर हजरात बातों को सुनते हैं, मगर उनको खुद रीड करना पड़ता है इन बिटवीन द लाइन। बीच में से अब पीर हजरात को तो पकड़ना पड़ता है मामला क्या है, दोनों की बातें सुनने के बाद समझना पड़ता है कि मामला क्या है। चुनांचे जब मामला सामने आया तो पता चल गया कि उन्होंने अपनी बीवी पर पाबंदी लगाई हुई थी कि तुम अपने घर फोन नहीं कर सकते। देखो ये काम करने वाले, तुम अपने घर फोन नहीं कर सकती, उनको खत नहीं लिख सकती। 4 साल गुजर गए थे, वो लड़की अपने घर नहीं जा सकती, क्या जुल्म हो गया। हालांकि खाविन का कारोबार इतना था कि 1 साल में वो 4 मर्तबा चक्कर लगा सकती थी। अल्लाह ने माल भी दिया था, ऐसा नहीं कि टिकट के पैसे नहीं। खाविन खुद 3 या 4 मर्तबा अपने मां बाप को मिलकर आता, बीवी को जाने नहीं दे, मिलकर आता, मगर अपनी बीवी को उसने 4 साल से घर नहीं जाने दे। उस पर और मुसीबत देखिए कि खत लिखने की इजाजत नहीं, फोन करने की इजाजत नहीं, चलो जा नहीं सकता कम से कम फोन तो करे, वो भी इजाजत नहीं। फिर जलती पर तेल का काम देख लीजिए, खुद बीवी के पास बैठकर, फिर खुद बीवी के पास बैठकर अपने मां बाप को फोन करता है, तो फिर तो कितना गम होगा। अपने मां बाप को फोन करता है, कितना बड़ा जुल्म है। और एक दीनदार बंदा अपनी नेक बीवी पर कर रहा है, उसको पता भी नहीं मैं क्या दीनदारी कर रहा हूं। और बीवी बिचारी चूंकि नेक और दीनदार थी, इसलिए वो खाविन के खातिर सब कुर्बानियां दे रही थी, मगर बेटी थी, उसका भी दिल तड़पता था कि मैं कभी अपनी मां से मिलूं, अपने बाप को देखूं, लिहाजा उसका दिल गमजदा रहता था। अब बताओ उसको घर में कैसे सुकून मिलेगा, कैसे सुकून मिलेगा। मैंने उस आदमी से कहा, थोड़ा सा बाकी, मैंने उस आदमी से कहा कि देखे आपके पास क्या शरीर दलील है कि अगर बीवी घर जाएगी तो फिर कोई गुनाह का मामला होगा। अब वो शक करता था, वो जाएगी तो कुछ हो जाए। भाई कोई दलील है? कहने लगा हरगिज नहीं, मेरी बीवी तकिया नकिया पाक साफ है, उसके घर वाले भी नेक है, मुझे ऐसा कोई खतरा नहीं। मैंने कहा फिर भेजने में क्या रुकावट है, जब शक भी नहीं है तो रुकावट क्या है? कहने लगा बस मुझे वैसे ही वो अच्छे नहीं लगते, बस वैसे मुझे अच्छे नहीं लगते। कमाल है। तो अभी इसके क्या दिमाग का इलाज करना चाहिए ना, मेंटल हॉस्पिटल में भेजना चाहिए। तो फरमाया बस मुझे अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा अच्छा, अब आइंदा आपने इस बात की पाबंदी करनी है कि अगर आप एक मर्तबा घर में चक्कर लगाए तो एक मर्तबा बीवी को भी चक्कर लगाने की इजाजत होगी, एक फोन आप करेंगे तो एक फोन बीवी को भी करने की इजाजत होगी। तो जब ये उसको बताया कि तुम्हारे घर के मसाइल का हल है ये, तो खाविन साहब को होश आया। तो हजरत तो बैतूनी थे तो हजरत की बात तो माननी पड़ेगी। तो हजरत ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप एक मर्तबा अपने माँ बाप के पास जाएंगे तो बीवी को भी एक मर्तबा भेजना पड़ेगा। तो अब इन पर पाबंदी आ गई, अब होश आएंगे। ओहो, बोले क्या हो गया? तो फरमाया तो अब खाविन साहब को होश आया कि मैं क्या गलती करता रहा। मगर बीवी कहने लगी नहीं नहीं हजरत, मुझे हर दिन फोन करने की जरूरत नहीं, महीने में एक दफा भी अम्मी से बात हो जाए तो मेरे लिए तो ईद का दिन हो जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या नेक बीवी होगी। चुनाचुन के घर के सारे मसले इसी एक अमल से हल हो गए और घर के अंदर फिर अल्लाह ताला ने उसको पुरसुकून जिंदगी अता कर दी। वो साहब दोबारा आए और कहने लगे हजरत मैं आपका एहसान नहीं उतार सकता। बाद में आया और कहने लगा हजरत आपका एहसान नहीं, पता नहीं शैतान ने मुझे क्या वरगला दिया था, मेरे दिमाग में क्या डाल दिया था कि मैंने अपने घर को जहन्नम की तरह बना लिया था। आपने मामला समझा और समझा कर हमें समझा दिया, अब हमारे घर में जन्नत की रौनक आ रही। क्या था? थोड़ा सा मामला, कभी कभी वो है ना अटक जाता है, लॉक हो जाता है, तो अब वो खुलता ही नहीं है कि दूसरी साइड, तो फिर खुलनी पड़ती है ना, हैंग हो जाता है जिसको कहते हैं, तो दिमाग भी हैंग हो जाता है, वो एक साइड ही देखता है दूसरी साइड भूल गया। तो देखिए 10 बड़ी गलतियां है, कितनी निकली 10, मुमकिन है उसके अलावा भी और भी बहुत सारी हो, लेकिन आजिज के दिल में जो बात 10 बातें आई वो आपके सामने पेश कर दी। इन गलतियों से खाविंदों को बचना चाहिए, अगर बचेंगे तो फिर उनको अल्लाह ताला खुशियों भरी जिंदगी अता करेंगे, घर के अंदर भी सुकून होगा, अल्लाह ताला के यहाँ भी उनको इज्जत मिलेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ भी उनको नेकी मिलेगी। लिहाजा आज की बातें यहाँ तक मुकम्मल करते हैं, शायद इन खतरनाक गलतियों से बचकर आपके घरों के माहौल और अच्छे हो जाएंगे। तो बचेंगे ना 10 गलतियों से। अभी इसी टॉपिक को हम कल भी बयान करेंगे, क्योंकि इस आजिज ने के हिसाब से इस मौजू पर अभी आधा बयान हुआ है, अभी आधा बयान हुआ है और तकरीबन आधा या कुछ ज्यादा और बाकी है। कल इंशाल्लाह खाविंदों के बारे में, अभी आप लोग कहेंगे यह सब हमारा जा रहा है, खाविंदों के बारे में, शोहरों के बारे में जो दूसरा हिस्सा रह गया वो बयान करेंगे। तो इंशाल्लाह चूंकि तकरीबन इतना काफी है, अभी आज भी जुमा का दिन है, बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो इंशाल्लाह हम यहाँ पर बात खत्म करते हैं। ठीक है, हम दुआ पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए। सुभानअल्लाह बिहम्दिही, सुभानकअल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन।